मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 25 सितंबर 2018 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मित्रों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने अक्टूबर और मार्च 2019 में होने वाली क्लासेस के लिए दाखिले लिए हैं और अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इनमें से दो मित्र अक्टूबर नवंबर की क्लासेस में आ रहे हैं और दो मित्र अगले वर्ष की मार्च की क्लासेस में। अक्टूबर और नवंबर के क्लासेस में आने वाले मित्रों के नाम हैं मोहम्मद मुश्ताक खान भोपाल से हैं और खुशबू साव आप कोलकाता से हैं। तो मोहम्मद मुश्ताक और खुशबू आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ठीक इसी तरह से अपनी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अजय रजक का जो दमोह मध्य प्रदेश से हैं और जिज्ञासा मीणा का जो उदयपुर राजस्थान से हैं। तो अजय और जिज्ञासा आप दोनों का मैं एकेडमी की ओर से बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय के रूप में मैं गन्ना किसानों की समस्या पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन सच पूछिए तो मैं गन्ना किसानों की समस्या के माध्यम से मैं कुछ और ही बात करूंगा। तो प्लीज आप इसकी थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, मैं थोड़ी सी न्यूज की बात कर लूं। हालांकि न्यूज में बात करने के लिए कुछ विशेष बातें हैं नहीं। इस बीच में जो छुट्टियां रही हैं, इनफैक्ट कोई ऐसी घटना बहुत महत्वपूर्ण नहीं घटी है। आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जो राजनीतिक विमर्श हैं वो रफाल सौदे के इर्द गिर्द घूम रही हैं और रफाल सौदे के बारे में आप सब अखबारों में भी खूब पढ़ रहे होंगे, न्यूज चैनल्स पर भी खूब आ रही हैं। कल के डीडी न्यूज में उस पर डिस्कशन भी था। जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, उसके लिहाज से अभी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मालूम नहीं पड़ रहा है, आगे चल करके इसके बारे में देखेंगे। तो रफाल सौदे पर हम लोग अभी बात नहीं करते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो खासकर मालदीव में अभी चुनाव हुए हैं उसको लेकर। आपके दिमाग में जरूर ये प्रश्न आएगा कि मालदीव के चुनाव से हमारा क्या लेना देना है। हालांकि अगर आप थोड़े से लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे तो शायद थोड़ा सा ये अनुमान तो आपको लग ही जाएगा कि चूंकि मालदीव भारत का बिल्कुल ही पड़ोसी देश है, आप देखिए तमिलनाडु और केरल के तो बिल्कुल पास में ही है, एकदम नजदीक ही है। चूंकि पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश होने के नाते भारत की विदेश नीति का, विदेशी संबंध का, इंटरनेशनल रिलेशन का या आप कह लीजिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक बात और है और वो बात यह है मित्रों कि अगर आप 2013 का जनरल अनसॉल्ड पेपर उठा करके देखेंगे, मेंस का इंटरनेशनल रिलेशन आपके सेकेंड पेपर, जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में आता है, तो उसमें देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मैं बार बार आप सबसे कहता हूं कि अनसॉल्व्ड पेपर से आपका लगातार संपर्क होना चाहिए, वो लाइट हाउस होता है जो आपको रास्ता दिखाता है। अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर के टच में नहीं है तो मालदीव की ये घटना आपके लिए छोटी सी घटना होगी, आप छोड़ देंगे उसे, और एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाता है तो फिर आप हक्के बक्के रह जाएंगे कि ये क्यों पूछ लिया गया। जबकि सच ये है कि अगर पूछा जाता है तो ये उम्मीद की ही जानी चाहिए कि इसे पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ये बताएगा कौन, ये अनसॉल्व्ड पेपर बताएंगे। अनसॉल्व पेपर अगर आप 2013 का उठाकर देखेंगे तो उसमें देखिए बहुत क्लियर कट एक क्वेश्चन पूछा गया है जो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है जो अभी हुआ है, जो घटना हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मालदीव में पिछले दो वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए, यह बताइए कि क्या यह भारत के लिए चिंता का विषय है। 200 शब्द, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन मालदीव्स इन द लास्ट टू ईयर्स, should they be of any cause of concern to India, 200 words. अब आप देखिए कि बहुत सिंपल सी बात पूछ रहे हैं वो कि मालदीव में पिछले दो सालों में कौन सी किस तरह की घटनाएं हुई हैं उनको बताइए, और बताने के बाद फिर बताइए कि भारत के लिए ये चिंता का विषय क्यों है, खत्म हो गई बात। अब आप देखिए कि उसी पैटर्न पर अभी एक घटना हुई है, और घटना ये हुई है कि वहां चुनाव हुए और उस चुनाव में मोहम्मद सॉलिह जो है वो विजेता बने और काफी मार्जिन से उस वो जीते, और इससे पहले के जो वहां के राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन वो पराजित हुए। अब भारत के लिए इसका क्या संबंध है? देखिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उनका जो झुकाव होता है आप पाएंगे वो भारत के संदर्भ में ही होता है, सीधे सीधे नहीं होता, स्ट्रेट नहीं होता है, और आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ भी है। तो इससे पहले जो वहां के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन, उनका एक तो झुकाव चीन की तरफ था, चीन के जो BRI है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया था, वो थोड़े से आप यूं कह लीजिए कि तानाशाह किस्म के व्यक्ति भी थे, उन्होंने यहां तक कि जो जजेज होते हैं उन तक को आप कह लीजिए कि जेल में डाल दिया था। तो ऐसी स्थिति में, यानी कि जो हमारा पड़ोसी देश था मालदीव, वहां उस रूप में यूं कह लीजिए कि डेमोक्रेसी नहीं थी, और बाकायदे उन्होंने एमरजेंसी तक डिक्लेयर की और अपोजिशन के लीडर्स तक को जेल में डाल दिया। और यहां तक कि मालदीप में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा था उस समय यामीन जी के समय में, तो बकायदे जो अमेरिका है और यूरोपियन यूनियन है उन्होंने धमकी भी दी, क्या धमकी क्या कहना, जो चेतावनी भी दी कि आप अपने यहां डेमोक्रेसी लेकर के आइए, स्थितियों को ठीक कीजिए, अदरवाइज आप पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और इसमें भारत भी शामिल था। सीधी सी बात है कि भारत मालदीव में अभी जो सरकार थी उसको लेकर के खुश नहीं था, या दूसरे शब्दों में कह लें कि मालदीव के साथ हमारे संबंध उतने सुमधुर नहीं रह गए थे क्योंकि चीन की तरफ झुकाव था। अब जबकि वहां सत्ता परिवर्तन हो गया है तो सीधी सी बात है कि भारत के लिए यह बहुत अच्छा अवसर है कि वो मालदीव से अपने संबंधों को बहुत अच्छा बनाए, ये बहुत अच्छा अवसर है। और डेफिनेटली अमेरिका और जो यूरोपियन यूनियन है वो भारत के साथ है। इसके साथ ही साथ एक चीज और भी अभी डेवलप हुई है जो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका बहुत ज्यादा चीन की तरफ झुक गया था, और खासकर वही BRI का जो उनका जो प्रोजेक्ट होता है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसको हम BRI कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके कारण जो श्रीलंका है उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, कर्ज हो गया चीन का। तो अब जो श्रीलंका है वो श्रीलंका अब थोड़ा सा अपने आप में कहीं ना कहीं दिक्कत महसूस कर रहा है, मालदीव भी इसे करेगा, और ऐसी स्थिति में भारत के साथ उसके संबंध डेफिनेटली बहुत अच्छे होने की संभावनाएं हैं। तो ये देखिए कि अब बहुत ही सिंपल सी चीज है, सामान्य सी बात है, इसमें कहीं कोई पेच नहीं है, कहीं कोई डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन यदि आपने इसको मिस कर दिया तो ये मान करके चले कि हो सकता है कि आपका एक प्रश्न मिस हो जाए, चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेन्स हो। तो मित्रों, ये एक छोटी सी घटना थी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, उसकी चर्चा मैंने की। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है गन्ना किसानों की समस्या। गन्ना किसानों की समस्या को लेकर के आज मैं आपको एक आर्टिकल ही प्रोवाइड कर रहा हूं, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का, आप इसे पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डॉक्टर भरत झुनझुनवाला बहुत अच्छा लिखते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिहाज से बहुत अच्छे से समझाते हैं, उदाहरण दे दे के समझाते हैं। ये जो आर्टिकल मैंने चुना है और इस सब्जेक्ट के माध्यम, इस टॉपिक के माध्यम से कह लीजिए, जो मैंने आप से बातचीत करने का निर्णय लिया है मित्रों, उसके पीछे इनफैक्ट गन्ना किसानों की समस्या उतना बड़ा कारण नहीं है जितना ये है कि एग्जामिनेशन में कुछ इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसके अंत में लिखा होता है समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इस तरह के शब्द होते हैं, या मतलब दो शब्द युग्म देखिए, जोड़े देखिए, समालोचनात्मक अपने आप में समालोचना हो गई, मूल्यांकन कीजिए, दो हो गए, समालोचना भी कह रहे हैं मूल्यांकन भी कह रहे हैं। दूसरा शब्द मैंने कहा कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यहां भी दो हैं, आलोचना और परीक्षण, राइट, यहां भी दो शब्द हैं। तो पहली बात तो यह मान करके चलिए कि चाहे समालोचनात्मक मूल्यांकन कहें या आलोचनात्मक परीक्षण कहें, या समालोचनात्मक परीक्षण कहें आलोचनात्मक मूल्यांकन कहें, किसको भी, किसी को भी किसी के साथ जोड़ा जा सकता है, इस भ्रम में मत रहिएगा कि नहीं ये जोड़ा इसी के साथ ही बनेगा, नॉट एट ऑल, किसी के साथ भी डाला जा सकता है, इन दोनों युग्मों में कोई फर्क नहीं है, सामान्यतया कोई फर्क नहीं, उसको लेकर के आप अपने दिमाग पर बहुत लोड लेकर के मत चलिए। लेकिन इसका अर्थ क्या है? जब एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तब उसका अर्थ होता है कि आप सीधे सीधे एक तरीके से उसका परीक्षण कर दीजिए, राइट, लेकिन जब दो शब्द दिए जाते हैं तो उसका मतलब है कि आपने जो परीक्षण किया है उसकी फिर से परीक्षा कीजिए, उसका फिर से परीक्षण कीजिए। अब मैं ये बात आपको इस आर्टिकल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए कि इस आर्टिकल में जो भरत झुनझुनवाला ने जो एक प्रॉब्लम डिस्कस किया है वो ये है कि हमारे जो गन्ना किसान हैं वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। तकलीफ में क्यों है? सिंपल सा रीजन है कि उनके गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। जब गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है तो अब स्वाभाविक रूप से सरकार ने उनका रेट उनके रेट फिक्स कर दिए हुए हैं। अब जो गन्ना मालिक हैं, जो गन्ना मालिक नहीं कहना चाहिए, यहां जो चीनी मिल के मालिक हैं, उन्हें अब किसानों से जो गन्ना खरीदना पड़ रहा है वो सरकारी रेट पर खरीदना पड़ रहा है, जो लगभग लगभग 2800 रुपए प्रति क्विंटल है। और जब इस रेट पर वो गन्ना खरीदते हैं तो उनकी चीनी का जो कीमत निर्धारित होता है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। मतलब अभी आप बाजार में चीनी खरीदने जाइए तो लगभग 35 रुपए किलो है, जबकि विदेशों में जो चीनी की कीमत है वो लगभग 22 रुपए है। तो अब होगा क्या कि विदेशों से आप चीनी खरीदेंगे, आयात करेंगे, तो हमारी 35 रुपए की चीनी का क्या होगा? और अगर आप गन्ने का रेट घटा देंगे, 2800 रुपए से कम कर देंगे, तो पता लगा कि उसमें किसानों को नुकसान हो जाएगा। तो अब सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की कीमत पर चीनी मिल मालिकों को गन्ना खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। चीनी मिल मालिकों को इससे घाटा हो रहा है। जब उनसे घाटा होता है तो वो किसानों को भुगतान नहीं कर पाते गन्ने का, फिर सरकार उनके भुगतान के बारे में मालिकों को ऋण देती है, ये कर देती है, ये सारा का सारा मामला गड़बड़ हो गया। और हमारे यहां जो चीनी की खपत है उससे बहुत ज्यादा चीनी का उत्पादन हो रहा है, ये कुल मिलाकर समस्या है, राइट? ये मित्रों एक पक्ष है। इसके बाद दूसरा पक्ष देखिए, तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर ध्यान दीजिएगा, इसका हल क्या हो सकता है? तो बकायदे उन्होंने इसके तीन हल सुझाए हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको हल बताने नहीं जा रहा हूं, आप इतनी तकलीफ कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, तब आप अच्छे तरीके से पकड़ पाएंगे। तीन हल सुझाए। पहला हल उन्होंने सुझाया कि चीनी का निर्यात कर दिया जाए। तो चीनी का निर्यात क्यों नहीं किया जा सकता, ये उन्होंने बताया है। तो चीनी का निर्यात कर दिया जाए एक आलोचना हो गई, राइट? और क्यों नहीं किया जा सकता वो आलोचनात्मक मूल्यांकन हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये देते हैं कि जो गन्ना जिसे चीनी बनाया जा रहा है उससे केवल चीनी क्यों बनाया जाए? गन्ना ही ज्यादा पैदा हो रहा है ना, तो उससे आप एथेनॉल बना लीजिए, पेट्रोल बना लीजिए, तो इससे बहुत अच्छा होगा कि साहब हमारा यहां पेट्रोल का उत्पादन भी होने लगेगा और हम जो पेट्रोल का इतना आयात करके विदेशी मुद्रा देते हैं वो भी कम हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि यह भी क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये फिर हो गया समालोचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि वो हल सुझा रहे हैं लेकिन उस हल का की फिर से आलोचनात्मक परीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद फिर वो तीसरा हल सुझाते हैं। तीसरे हल में कहते हैं कि जो भारतीय खाद्य, जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो चीनी खरीद ले। जब चीनी खरीद लेगा तो मार्केट में चीनी ज्यादा नहीं रहेगी तो किसानों को मिल जाएगा। फिर वो बताते हैं कि ऐसा भी कैसे नहीं किया जा सकता, अगर वो करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? यानी कि खरीद ले फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो एक आलोचनात्मक हो गया, आपको एक तथ्य दे दिया गया, लेकिन फिर परीक्षण करते हैं कि नहीं नहीं इसमें की क्या प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद फिर अंतिम हल सुझाते हैं, जिसे आप निष्कर्ष कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, वो है कि गन्ना उत्पादन कम किया जाए। और उसमें भी फिर वो बताते हैं कि अगर कम करेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी, वो भी बताते हैं, लेकिन उसका भी फिर हल सुझाते हैं। और इस तरीके से आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, समालोचनात्मक परीक्षण करते हैं। ये इस आर्टिकल का चरित्र है। मित्रों मैंने इसीलिए इस आर्टिकल को चुना है, और याद रखिए यह विषय भी इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैंने लिया है यह टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और साथ ही एग्जामिनेशन में आप कैसे आलोचनात्मक परीक्षण, समालोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे उसका एक बहुत खूबसूरत नमूना भी है, राइट मित्रों? तो आप सब इसे ध्यान से देखिएगा। और इसके साथ ही साथ मैं कुछ आपको और भी न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, आप उन्हें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मित्रों इनमें से गौरव शर्मा दिल्ली के हैं और प्रियंका आप भी दिल्ली से हैं, उन दोनों को मैं अपनी पत्नी की ओर से और अपनी ओर से आशीर्वाद देना चाहूंगा। उन्होंने किसी एक बहुत ही खूबसूरत कारण से हम लोगों का आशीर्वाद चाहा है। तो गौरव और प्रियंका, आप दोनों को मैडम और मेरी ओर से आशीर्वाद, और हमारे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीजन तो मैंने नहीं बताया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लोग कारण समझ गए होंगे और हल्के हल्के मुस्कुरा भी रहे होंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट की खूबसूरत लकीरें उभर भी आई होंगी। तो सभी मेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम है अभय दास, भारत साहू, राहुल दुबे, केशव देव काछवाल, काछवा राजस्थान से, अब्दुल खान, अभिषेक, अशोक मौर्य इलाहाबाद से, मनीष राज शेखपुरा बिहार से, और दिनेश, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।